interview with Ramayan Patel at BHU campus on 1st of May 2018, conducted by Aheli Chaudhary. Recording begins now. Ramayan, आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ. आप कहाँ से पढ़ाई किया, कहाँ से हो, घर कहाँ है, यहाँ कैसे आए, थोड़ा सा बताइए.
मैं जो हूँ मध्य प्रदेश रीवा का हूँ.
अच्छा.
और मेरी 12th तक की पढ़ाई वहीं से हुई. फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन BHU में एडमिशन लिया, फिर PG किया, फिर PhD में भी इनरोल्ड हूँ मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च का.
अच्छा.
मेरा गांव जो है एक तरह से कहा जाए कि जब पूरा कांसीराम का मूवमेंट चल रहा था पूरे इलाके में, तो उसमें सबसे प्रभावशाली एरिया में से एक था. और 91 का दौर था, तो हमारे यहाँ डकैत भी खूब रहा करते थे, तो जाति एक तरह से लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती थी. और जो बुंदेल खंड का जो पूरा इलाका है, चाहे चित्रकूट हो, चाहे वो सतना रीवा हुआ है, ददुआ टुकिया, इस टाइप के डकैत भी मेरे इलाका में रहते थे. तो एक तरह से वो जो डकैत का जो पूरा इलाका रहता है, वो जाति वर्चस्व का पूरा गेम रहता था कि इस जाति का डकैत, उस जाति का डकैत, उस जाति का डकैत, उस हिसाब से प्रोटेक्ट करते थे. उसी प्रकार जब जो पूरे कांसीराम का मूवमेंट, जब बहुजन मूवमेंट चला, तो उसमें भी रहता था कि जैसे हमारे यहाँ के जो ज़िले की पॉलिटिक्स थी वो कास्ट वाइज थी, कि ये इस जाति, मतलब जैसे हम पटेल आते हैं तो पटेल मतलब बहुजन, ऐसे जो वो रहता था. एक बार क्या हुआ कि मैं संघ के शाखा में गया, संघ के शाखा में जब गया तो बोले यार पटेल तो बहुजन में रहते, तुम यहाँ कहाँ से आ गए. तो मुझे उस समय कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ पर स्कूल में पढ़ता था, शहर में पढ़ता था, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था. तो मैं कहा यार मैं तो यहाँ, लोगों ने मुझे बुला के लाया था, कसरत होता है, ये होता है, होता है, और उसके बाद यहाँ पर तो मुझे कह रहे थे कि यार ये बहुजन में होते हैं और तुम यहाँ कैसे आ गए. तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया. तो धीरे धीरे जब मैं स्कूल में गया, स्कूल में मैं मुझे इंटरेस्ट रहता था कि घर वाले, बस मेरे घर में क्या काम रहता था कि जाके पढ़ना, कोचिंग जाना, लौट आना, और कभी कभी खेलने घूमने जाना है तो घर के पास जो शाखाएं लगती थी कभी कभी उस पर चले जाना, तो थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस फैल रही थी. दूसरी बात, हमारे यहाँ का जो जाति संघर्ष चल रहे थे उससे भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी जानकारी मिलती है कि देखो ये इस जाति का है, इस जाति का है, इस टाइप का है, और उन जातियों का मूवमेंट चल रहा, तो हमारे स्कूल में भी मेरा इफेक्ट पड़ता रहता था. तब भी इफेक्ट लोगों को पड़ता था, लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ी अच्छी रहे तो उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है उन सब चीज़ें, जो कास्ट का इशू नहीं करता है या कि क्लास का इशू कुछ नहीं करता, तो हम लोग आपस में पढ़ते रहते थे. लेकिन जैसे ही वहाँ का पूरा सीनेरियो था, गांव जाते थे तो कभी कभी थोड़ी सी फेस करना पड़ता, लेकिन हम लोग शहर में रहते थे तो कोई चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती थी. तो वहाँ से पढ़ के अच्छे तरीके से, और BSP का जो पूरा मोमेंट था वहाँ पर, हमारे यहाँ 2-3 सांसद BSP के हुए, जबकि पूरे देश में BSP कम होती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में एक जगह रहती थी. उस समय जो मेरा इलाका था तो अर्जुन सिंह को BSP से लोगों ने हराया, जब अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर रह चुके थे. रीवा में विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी थे, उनको हराया. ऐसे कई लोगों को BSP वालों ने हराया था. तो मेरा मोमेंट मेरा था कि वहाँ पर एक कास्ट अवेयरनेस था ही सोशल जस्टिस के इशू पर. जब इस कैंपस में आए, BHU में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए, तो यहाँ पर हमको शुरुआती दौर पर हॉस्टल नहीं मिला. जब इस हॉस्टल में डेलीगेसी में था, डेलीगेसी में पहली बार जब मैं एंट्री का मारा, तो उसमें जब सिग्नेचर करवाने गया तो बोले यार रीवा के जो लोग होते हैं बहुत मतलब बदमाश होते हैं. तो मैंने कहा सर बदमाश कैसे कह सकते, बोले डकैतों का इलाका है, इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, और इतना बदमाश होते हैं कि इनका सभी डॉक्यूमेंट चेक होना चाहिए. मैंने कहा सर कोई आया होगा, कुछ गलत कर दिया होगा, डॉक्यूमेंट तो चेक होना चाहिए, लेकिन बदमाश कहना आपका जायज़ नहीं है. उसी में थोड़ा सा पंगा हुआ. उसके बाद हम कहे सर ये गलत बात है, आप बदमाश मुझे मत कहिए, किसी एरिया स्पेसिफिक आप बदमाश कहना शुरू कर देते हैं, कुछ गलती किए हो तब कहिए. तो इस टाइप के धीरे धीरे अवेयरनेस फैलना शुरू हुई, हॉस्टल में रहना शुरू किए.
जब हॉस्टल पहले साल नहीं मिला तब नेक्स्ट साल मिला,
नहीं 3-4 महीने बाद मिला. तो धीरे धीरे जब हॉस्टल में रहना शुरू किया, तो मुझे, मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, तो जब क्लास में मैं सोशल साइंस का यहाँ स्टूडेंट बना तो लोग बोलते थे और मुझे कुछ आता नहीं था, तो मुझे लगता था कि यार मैं कैसे बोलूँ. तो मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पहला लिटरेचर यहाँ पर भगत सिंह का दिया गया, नौजवानों से बात का, तो मैंने उसको पढ़ा. फिर नास्तिक क्यों हूँ वो मिला, फिर विद्यार्थी, हर तरह से उनके मिलते गए, तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया. जब बहुत पढ़ता गया तो विकास भैया जैसे लोग, उसी हॉस्टल के मेरे सीनियर थे विकास सिंह, और कई साथी थे जो RSS की शाखा भी लगती थी बाहर जाके, तो उन सब लोगों से मैं मिलता रहता था. तो जब वह धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ, लोगों से बातें शुरू हुई, तो एक डिस्कोर्स क्रिएट हुआ। डिस्कोर्स क्रिएट हुआ कि भाई हमको लड़ना चाहिए। जब हम पढ़ते थे क्लास में, तो पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट था, तो थ्योरी के बहुत इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, सोशल जस्टिस, सब चीज़ें पढ़नी पड़ती थी। और जब पढ़ रहा था तो वही चीज़ें मैं इसके बाहर इतर जाके देखूं तो बहुत सी प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती थी। जब हम लोग मेस में थे, मेस में वर्कर हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते थे, प्रॉब्लम में रहते थे, ठंडी में उनके कपड़े नहीं रहता था, तो हम लोगों ने मतलब जैसे ठंडी आती थी तो उनके लिए कंबल खरीद के देना, सभी से कलेक्ट करते थे पैसे कि भाई ठंडी आ रही है, मेस के वर्करों के लिए पैसे चाहिए। तो ऐसे एक ग्रुप पूरा क्रिएट हो गया था कि भाई ये आया, कुछ आया। मैं कभी भी किसी से मांगने जाऊँ कि यार मुझे पैसे की ज़रूरत है, इतने चंदे हैं, तो सभी लड़के मिलकर चंदे जुटा के हम लोग दे देते थे। या कोई मेस वर्कर का कोई प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग पैसे सब जुटाते थे कि यार मिस वर्कर का हो गया तो इसको करो। बच्चों को अगर पढ़ने की ज़रूरत होती थी तो हम लोग किताब जो भी होता था वो देते रहते थे। तो ये धीरे धीरे एक अवेयरनेस फैलती गई कि यार, क्योंकि ये रहता था कि हम लोग ये सोचते थे कि यार जो पढ़ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसमें थोड़ा अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी किसकी है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो जिम्मेवारी तो मेरी है ना। अगर मैं नहीं करूँगा तो ये ड्यूअल करेक्टर और ड्यूअल स्टैंडर्ड की जो थ्योरी वो हो जाएगी, और फिर जो दूसरे लोग हैं जो बोलते हैं उसमें मेरे में अंतर नहीं रह जाएगा। तो हमको ये चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को जो मतलब जो पढ़ रहे हैं उसको ज़मीन में भी थोड़ा उतारें जितना बन सके। ये नहीं था कि अपनी चीज़ों को ज़्यादा इफेक्ट होते। जैसे हम लोगों ने स्टडी सर्किल शुरू किया, फिर लोगों से बात, स्टडी सर्किल, फिर लोगों को बुलाना, जो लिटरेचर रहे अपने पास देना, कुछ मैगजीन।
जब कह रहे हो कि हम लोगों ने शुरू किया, ये हम लोग कौन है?
ये पूरा हॉस्टल का ग्रुप करता है। जैसे भैया रहते थे, भैया बहुत अच्छी कविता का वाचन करते थे।
भैया
विकास सिंह भैया रहते थे, कविता का बहुत अच्छा वाचन करते थे। एक कम्युनिटी फीलिंग रहती थी पूरी, कि ये पूरा हॉस्टल का परिवार है। तो चाहे विकास भैया हों, आदित्य भैया हों, आनंद भैया, ऐसे सभी लोग रहते थे। सभी लोगों का एक गाइडलाइन मिलती रहती थी कि चलो हमारे सीनियर ये कर रहे हैं, हम भी करेंगे ऐसे। तो ये धीरे धीरे एक प्रक्रिया शुरू हो गई। कभी कोई किसी का प्रॉब्लम हो तो हम लोग पहुंच जाते। जैसे विकास भैया जैसे लोग जब मेस वालों को लेकर जाते थे, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो हम लोगों को भी वही प्रक्रिया हो जाती थी, तो हम लोग भी इन लोगों के साथ चल देते थे। तो ये पूरा एक दौर शुरू हुआ कि हम लोग ये धीरे धीरे एक प्रक्रिया बढ़ती गई। अब एक चीज़ ये भी होने लगा कि जैसे हम अलग चीज़ों से थोड़ा लोगों से मिलते गए, और जब भी कोई नई व्यक्ति आता था तो मैं इस लोगों से पूछता था कि ये बताओ, जिस सोसाइटी में रहते हो, सब चीज़ों के बारे में सोचते हो, क्या कभी तुमने सोचा है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जिस सोसाइटी में तुम जीवन जन्म लेने से लेकर मरने तक रहते, उसको बेहतर करने के लिए कभी अकेले में सिर्फ इसी विषय बस में सोचा है कि इसको कैसे बेहतर बनाया जाए? तो जब मैं ये लोगों से पूछता तो मुझे लगभग 99% ऐसे लोग मिले, यार मैं कभी बैठ के इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो मैं, यार बताओ, जिस पे तुमको जन्म लेने से लेकर मरने तक जिस सोसाइटी में रहना है, उस सोसाइटी को बेहतर करने के लिए तुम सोच नहीं पा रहे हो, सोचते नहीं हो, तो कम से कम इसके बारे में 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट ही एक दिन में थोड़ा दिया करो, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जब ये हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया तो इससे बहुत इफेक्ट कर, लोग सोचना शुरू कर दिया। तो जब ये सोचते थे तो बहुत से लोग फीडबैक दूसरे टाइप का हमारे पास आता था कि यार जिस टाइप का हम सोच रहे हैं लगता है कि इससे तो भयावह स्थिति बनेगी, इस टाइप का। फिर वो कंपेरेटिव स्टडी करते थे कि सोसाइटी का, जो कहते थे कि जब सोचना तो अपनी यहाँ की स्थिति, अपने गांव की स्थिति, जो आपके अगल बगल की स्थिति है उसके बारे में भी सोचना। हो सकता है मेरे साथ यहाँ कोई अन्याय ना होता हो, लेकिन मेरे गांव में कोई व्यक्ति होगा उसके साथ अन्याय होता होगा। यहाँ में इस वर्कर को देखना, उसके साथ कुछ होता होगा, हमारे क्या दायित्व है, हम क्या कुछ बचत कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर एक बचत बैंक टाइप को छोटा छोटा चीज़ें शुरू किया कि 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये जो जितना बचत कर सके पर मंथ बचत करो, उसका एक कोर्स बनाओ, हमारे दोस्त कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको देंगे। तो ये जब सीधे धीरे धीरे चलता गया, वही प्रक्रिया चलती गई। यूनिवर्सिटी में हम लोग अलग अलग इशू को रेज करना शुरू कर दिए। अब यूनिवर्सिटी में चाहे टिकट काउंटर था, रिजर्वेशन होता था, वहाँ पर स्टूडेंटों के लिए अलग से जगह नहीं रहती थी, हमके स्टूडेंट और पब्लिक हमेशा मार करते रहते थे। हम लोगों ने मार किया कि भाई स्टूडेंट के लिए अलग से काउंटर बनना चाहिए, वो सफल हो गया। उसके बाद हम लोगों ने फी हाइक का मूवमेंट यहाँ किया, उस क्योंकि फी लगभग 200 गुना से ज़्यादा बढ़ गई थी। हमने कहा कि हर चीज़ें, जैसे हमारी स्कॉलरशिप नहीं बढ़ रही हैं, हमारे बच्चे गांव से आते हैं, उस गांव के बच्चे यहाँ आते हैं 200 गुना फीस बढ़ा देंगे तो कैसे भरपाई कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक डाटा था कि बहुत से लड़कों को जो हम लोग मदद करते थे, किसी को कि वही अपनी ज़मीन को गिरवी रख के किसी के घर वाले पढ़ा रहे थे, तो कोई किसी के माता अपने गहने गिरवी रख कर रहे, ऐसे बहुत से गरीब घर के लड़के थे, कोई कुछ ऐसे बच्चे थे कि मैम संडे को भोजन नहीं करते थे क्योंकि डबल डाइट रहती थी, तो संडे को भोजन एक दिन भोजन नहीं करते थे तो उनका एक दिन का 80 रुपये के आसपास बच जाता था। ऐसे भी हम लोग देखते थे कि देखो यार कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भोजन नहीं करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका पैसा कुछ बच जाएगा, क्योंकि उस दिन डबल डाइट रहता था, कोई कुछ समोसे खा लेता था, कोई कुछ खा लेता, तो ये पूरी परिदृश्य हम लोगों का आंखों देखा दिखाई देता था। बोले यार इस सोसाइटी में जिसको बहुत से खाना मिलता है और किसी को कुछ नहीं मिलता, तो हम लोगों से जितना मदद होता था हम लोग करना सोचते थे, वो जैसे किताबों का हम लोग लाइब्रेरी छोटी सी बनाए, हॉस्टल में ही अपने रूम में रखते थे, उसको बना के रखे और लोगों को देते रहते थे कि भाई ये किताब आप ले जाओ पढ़ के आना मुझे दे देना, पढ़ के लाना मुझे। तो हम लोगों ने कोऑपरेटिव सिस्टम में ये हुआ कि इतनी किताबें हम लोग खरीदा करेंगे पर मंथ और उसमें जितने लोगों को कुछ लोगों को दिया करेंगे। तो ये प्रक्रिया हम लोगों के धीरे धीरे जो हॉस्टल की पूरी लाइफ थी, जो हमारे सीनियर्स जैसे विकास भैया, आनंद भैया, आदित्य भैया, मनोज भैया, ऐसे बहुत से साथी जो थे, उनकी वजह से जैसे उन लोगों ने जो प्रक्रिया शुरू की, तो वही चीज़ को हम लोग धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिए। और आज ये हुआ कि फिर जैसे जो जो भी कोई मोमेंट होता था उसमें हम लोग पहुँच जाते थे, रहा ही नहीं जाता था कि यार ये गलत हो रहा है जाना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोगों ने जब छात्र संघ का मूवमेंट हुआ तो हमने कहा कि आप प्रोफेसर हमारे आए कि विकास भैया भी भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, तो उसमें ये हुआ कि सर आप लोकतंत्र की बात करते हैं, तो जैसे हमारे सर लोग कहते थे कि यार यहाँ पर लोकतंत्र जब था, जब छात्र संघ था तो बहुत मार होता था, झगड़े होते थे, किसी के हाथ पैर
भूख हड़ताल में आप लोग क्यों बैठे थे?
छात्र संघ की मांग के लिए।
अच्छा, तो स्टूडेंट यूनियन,
स्टूडेंट यूनियन के लिए, क्योंकि हमने कहा कि लोकतंत्र का विकल्प बेहतर लोकतंत्र होता है, इसका मतलब नहीं कि लोकतंत्र को ख़त्म कर दो। अगर देश, हम लोगों को उस समय यही था कि अगर देश में भ्रष्टाचार है, अपराधी हैं, सभी कोई संसद में पहुंच जा रहे हैं, तो इसका मतलब है थोड़ी एक लोकतंत्र को ख़त्म कर दो।
ये कौन से साल में है?
ये 2013 में हम लोग किए थे।
अच्छा,
2013 में किए थे, लेकिन 7 दिन के भूख हड़ताल के बाद भी प्रशासन का मतलब एक आश्वासन मिला था, लेकिन वो आश्वासन फलीभूत नहीं हुआ। प्रशासन तो दिया कि ठीक है हम डेमोक्रेटिक स्पेस हम स्टूडेंटों को देंगे, हम लोगों को मांग था कि जैसे धरना प्रदर्शन जो भी करना हमको अपनी मांग रखना है, मुझे एक स्पेस दे दीजिए, हम वहाँ पर जाएं अपनी बात रखें, प्रशासन की कोई आए व्यक्ति आए अधिकृत ऑफिसर्स आए वो हमारी बातों को ले और उसको सॉल्व करें। जैसे हॉस्टल की मेस की समस्या रहती है, मेस में आए दिन कई तरह के प्रॉब्लम रहते हैं, कई उसी समय हमारे एक मित्र थे अमृत लाल किस्मत लाल, उनकी डेथ हो गई थी फूड पॉइजनिंग से, तो इस टाइप के मतलब मोमेंट्स भी हुए हैं, लेकिन प्रशासन को मतलब एक तरह से लगता था कि सोशल साइंस के लड़के द्वयम दर्जे के होते हैं, एक तरफ साइंस के अच्छे पढ़ने लिखने वाले, सोशल साइंस के पढ़ने लिखने वाले नहीं, इस तरह से प्रशासन की धारणा थी। हम लोग कह नहीं ऐसे सर, हम लोग भी यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, बस ये है कि आप जो एक मेंटेलिटी बनी हुई है उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए और बताइए। जैसे प्रोक्टोरियल बोर्ड का हमेशा अत्याचार रहता था, 2-4 लड़के खड़े हो जाओ तो मारना शुरू कर देते थे, या सुरक्षा गार्ड्स जो थे उसके खिलाफ फिर संगठित हुआ कि आप किसी को नहीं मार सकते, क्योंकि रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स यहाँ पर या सैनिक जो होते हैं या सुरक्षा गार्ड होते थे उनको वही रुतबा रहता था कि अभी तुमको बताता हूँ, मतलब धमकियों के साथ आते थे और मारना शुरू कर देते। जैसे वीटी का भी माहौल है, हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये 2011-12-13 में हम ये 12 तक कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम ऐसे बैठ जाएंगे, आएंगे पता चला कभी भी परेशान कर सकते थे, लेकिन वो चेतना था कि हम लोगों के कैंपस को थोड़ा बेहतर बनाना है। और एक कंपेरेटिव स्टडी रहता था कि यार दिल्ली का ऐसा माहौल है, JNU में जो दोस्त मिलते थे बोलते यार मेरे यहाँ ऐसा माहौल, तो हम लोग कहते यार BHU में कैसे क्यों नहीं हो सकता। तो फिर ये धीरे धीरे हम लोग लड़ाई करने लगे कि हमारी नहीं BHU में भी ऐसे होनी चाहिए। फिर लड़की जैसे गर्ल्स जो हम लोगों ने जब प्रदर्शन मतलब भूख हड़ताल में जब बैठे हुए थे तो वहाँ पर लगा यार कि पहली बार जो है ना लड़कियाँ भी वहाँ पहुँच गई,
ये जो आप लोग छात्र संघ वाले,
हाँ लड़कियाँ भी पहुँची और सपोर्ट के लिए पहुँची, तो लोगों के लिए आश्चर्य हो गया कि यार यहाँ पर तो देखो लड़कियाँ भी सपोर्ट में आ रही हैं। जब फीस हाइक का मूवमेंट किया तब भी लड़कियाँ भी सपोर्ट में आना शुरू कर दी, तो हमने कहा कि धीरे, लेकिन उनकी भी एक समस्या थी कि वो बहुत से लड़के भी थे जो उनके मुद्दे को मतलब भटकाने की कोशिश करते रहते थे। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि इस पूरे मोमेंट को, जैसे फिर कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ से कैंपस से बाहर चला गया था, कैंपस से जब बाहर चला गया तो मैं महाराष्ट्र में कुछ किसान आंदोलन को लीड कर रहा था।
अच्छा,
वर्धा का एक किसान मूवमेंट, किसान आंदोलन था, 20,000 क्विंटल कपास थी, तो 400 किसानों की एक व्यापारी सुनील प्रभाकर टाला टूले जो RSS के संस्थापक सदस्य का बेटा था, प्रभाकर टाला टूले जी का, उसने किसानों का कपास ले लिया था। उस कपास में, क्योंकि मैं उस समय वर्धा यूनिवर्सिटी में भी कुछ दिनों स्टडी कर रहा था, वहाँ भी हमारे पास जो है ना कई राजनीतिक दल के लोग धमकियाँ देने आए कि इस मोमेंट से हट जाओ। तो हम लोगों ने कहा कि यार छात्रों ने का दायित्व है कि जब 8 किसान उनमें से आत्महत्या कर चुके थे, किसी की शादी करनी थी किसी की बेटी कुछ, क्योंकि विदर्भ तो आप जानते हैं किसानों का एक तरह से कब्रगाह माना जाता, उस स्थिति में भी कपास ले वो कहता था कि मेरा कुछ हो नहीं सकता। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने एक पूरा संगठित आंदोलन किया था और वो आंदोलन एक मतलब एक सफल हुआ था 13 दिन के भूख हड़ताल के बाद नागपुर में आरएसएस के खिलाफ, क्योंकि आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति था उसके, इसीलिए सरकार ने तो उसके खिलाफ किया था। तो हम लोग वहाँ से चेतना थी और उसी वजह से मेरा एमफिल भी वहाँ छूटा।
अच्छा।
कि जब मैं कर रहा था तो मेरे हेड जो मैम थी, तो वुमेन स्टडी का मैं स्टूडेंट था, तो महिला अध्ययन का स्टूडेंट होने के कारण वो सब चीज़ें तो मुझे पढ़ने को मिलता था, लेकिन जो प्रोग्रेसिव नेचर होने के बाद भी हमारे जो पूरा यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर है वो कहता था कि नहीं आप इस आंदोलन से अपने को अलग कर लो। हमने कहा नहीं, आंदोलन से तो आप अलग नहीं कर सकते, हो सकता है मुझे एमफिल छोड़ना पड़े। उसी वजह से मैंने फिर एमफिल जो है ना छोड़ दिया और उसके बाद मैं फिर बीएचयू पुणे लौट आया, और जब बीएचयू लौट आया तो फिर अब यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन लिया। उसके बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी में हम लोग काम करना शुरू किए।
ज्वाइंट एक्शन कमेटी क्या है?
ज्वाइंट एक्शन कमेटी ये बीएचयू के जो छात्र हैं और बुद्धिजीवी हैं उनका एक मतलब एक ज्वाइंट फ्रंट है।
अच्छा।
ज्वाइंट फ्रंट है और उस पर पूरी तरह से एक प्रोग्रेसिव एक कैंपस का माहौल प्रोग्रेसिव बनाया जाए, एक नया डिस्कोर्स डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स क्रिएट किया जाए, इक्वलिटी लिबर्टी इन सब चीज़ों की बात की जाए, तो एक कॉमन फ्रंट बनाया गया। क्योंकि यहाँ पर छात्रों को एक तरह से कुचल दिया गया था, छात्र संगठन कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, जो कर रहे थे कोई नाम मात्र के थे। तो ये हुआ कि भाई लड़ाई हमारी प्रशासन से, और प्रशासन हर छात्र को एक कास्ट एंगल से देखता था। तो हम लोग कहे नहीं, हम कास्ट एंगल से नहीं, एक डेमोक्रेटिक स्पेस जैसे मार्क करना है, हम उस एंगल से सभी को एक फ्रंट में ला के काम करेंगे। तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी का ये पूरा मूलभूत नेचर था, और ये था कि हम जो स्टूडेंट हैं और शहर के जो बुद्धिजीवी हैं, जो सजग नागरिक हैं, जो सामाजिक न्याय पसंद है, उनको भी हम इस पूरे ज्वाइंट एक्शन कमेटी से कनेक्ट करके उनको एक साथ एक मुहिम को छेड़ेंगे, एक लड़ाई करेंगे। तो वही चीज़ रहता, चाहे रेहड़ी पटरी वालों का मामला हो, जैसे रेहड़ी पटरी मामलों का जो लंका गेट के आसपास थे उनके मामला को हो, तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मैं, रामायण, विकास सिंह, दिवाकर, मुकेश, धनंजय भाई, तीनों छात्र ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ही थे हम लोग, और ज्वाइंट एक्शन कमेटी और रेहड़ी पटरी वाले सभी उस मुद्दे को लेकर पुलिस वालों ने हम लोगों को जेल भेज दिया, धारा 151 लगाया, मतलब 24 घंटे बाद हम लोगों को जमानत लिए, तब हम लोग और रजत भी थे तब छूट के आए। तो ये लड़ते रह गए। दूसरी बात, कर्मचारियों के मुद्दे पर पूरा ज्वाइंट एक्शन कमेटी पूरा संघर्ष करता रह गया। लाइब्रेरी 24 घंटे खोलने के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी पूरा संघर्ष करता रहा, उसके साथियों को एक्सपल्सन भी दिया गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली और ये हुआ कि भाई लड़कों की जो मांग थी जायज़ थी, क्योंकि बीएचयू में पहले लाइब्रेरी 24 घंटे साइबर लाइब्रेरी खुलती थी। जो माननीय हमारे पूर्व कुलपति जी आए थे, उन्होंने उनको शायद लड़कों को पढ़ना लिखना पसंद नहीं था, जब पढ़ना लिखना पसंद नहीं था तो उन्होंने लाइब्रेरी बंद कर दी, 24 घंटे नहीं 12 घंटे खुली रखते थे। तो लड़कों की मांग थी कि भाई लाइब्रेरी पढ़ने की जगह है, उसको खुली रखनी चाहिए, अब कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है वो आप नहीं बता सकते, मुझे कब पढ़ना है क्या करना है ये मैं तय करूँगा, और हर समय हर किसी का जैसे दिन को तो क्लास रहती है तो पढ़ने का एक अच्छा माहौल मिलता है, रात को अब पढ़ना है तो स्पेस नहीं देते थे, और हर जगह जा जाके वो कुछ ना जो जिस वैचारिक परंपरा से आते थे वो अपना वो परिचय देते रहते थे। वो कभी लड़कियों को कह देते थे लड़कियों का काम है भाइयों की सेवा करना, और अगर लड़की कहे पिता मतलब भाई और लड़की के बीच में आ जाए, भाई बहन के बीच में कि किसको ज़रूरत है ज़्यादा नौकरी की, तो अगर भाई के लिए लड़की को त्याग करना पड़े तो लड़की को त्याग कर देना चाहिए, भाई को आगे काम बढ़ाना चाहिए, लड़कियों को जो है ना मतलब बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप से बाइक खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, मतलब कोई रिसर्च का काम नहीं करते हैं, इस टाइप को बार बार कुछ ना देते रहते थे। तो हम लोग भी उसका प्रोटेस्ट करते रहते थे कि मतलब माननीय कुलपति जी ऐसी बात नहीं है, अगर आप धरातल में हैं तो आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप ज़मीन से जुड़े नहीं हो और पठन पाठन की प्रक्रिया से आप नहीं जुड़े हुए हैं। जिस दिन आप पठन पाठन की प्रक्रिया से जुड़े होंगे तब आपको पता चल जाएगा कि स्कॉलरशिप का किस तरह यूज किया जाता था, क्या जाता है। अगर
तो आपका कहना है कि बेसिकली आप जिस मतलब जेएसी का जो गठन था, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी, उसमें बहुत सारे इश्यूज उन्होंने उठाए थे, कैंपस के इश्यूज थे, रेडी पटरी के इश्यूज थे, जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनके इश्यूज थे, सोशल जस्टिस के इश्यूज थे, जो जैसे आपने कहा, तो उस मुद्दे से लेकर के ये जो सितंबर में जो लड़कियों का जो पूरा आंदोलन हुआ, उसको कैसे उस टाइम पे जॉइंट एक्शन कमेटी और आपका क्या रोल था?
बता दूं, 15 दिन पहले जॉइंट एक्शन कमेटी का जो स्टडी सर्किल है पाठशाला, उसने पैट्रियार्की पर पूरा एक 2 लेक्चर आयोजित किया था, और स्टडी सर्किल था तो हम लोग करते थे, तो उसमें दोनों लेक्चर में एक बहुत इतने इशू उभर के आए कि पैट्रियार्की के हर आयामों पर चर्चा हुई कि उसका कास्ट का क्या वेरिएबल रहता है, फिर प्रॉपर्टी का कैसे रहता है, उसमें एक्सप्लॉयटेशन किस किस रूप में होता है, वो पूरा डिस्कोर्स करते रहे। सेम कंडीशन हुई कि कैंपस में तो उससे पहले भी मतलब क्या कहते हैं, मोलेस्टेशन का केस तो होते रहते थे, लेकिन जब उस समय हुआ तो ये उस दौर में लड़कियों के बीच में एक चेतना का उभार था, क्योंकि सभी लड़कियां जब पाठशाला का जो स्टडी सर्किल हम पैट्रियार्की पर कर रहे थे उस पर पूरा फोकस था, तो जब उस समय उस स्टडी सर्किल से सीधे उनके कानों से गुजरा और उन्हीं के सामने प्रत्यक्ष हुआ कि बोले यार कल तो हम स्टडी सर्किल में यही पढ़ रहे थे, आज ही हो रहा है, तो ये धीरे धीरे जैसे रात को जैसे घटना हुई लगभग शाम को, तो हम लोगों ने सभी को रात तक सोशल मीडिया से पूरा प्रचारित करना शुरू कर दिए, अपना जॉइंट एक्शन कमेटी का व्हाट्सएप ग्रुप था, सब कुछ ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये अभी वो हुआ, पुलिस जो है लड़कियों को बंद की हुई है, लड़कियां आंदोलन के मूड में हैं, लड़कियां अब ये सहने के, क्योंकि अभी तक जितने अत्याचार हो रहे हैं उस पर सहने के मूड में नहीं है, लड़कियां अपना बात कहना चाहती हैं। और उसी समय जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर के लोग थे, जो वार्डन थी और बाकी लोग, उनका कहना हो जाता था कि अरे यार छेड़ी तो मतलब गंदा ही तो पकड़ा है, या कपड़े ही तो पकड़ा है, छेड़ा ही तो है, इस टाइप के जो वक्तव्य देना करें, तो लड़कियां और आंदोलित होने लग गई। उनके मन में सवाल आने लगा कि मैम अगर छेड़ी ही है तो आपको अगर टच कर दे तो आप यही भी कहेंगे कि आप भी छेड़ी ही है, अगर छेड़ा ही क्यों, जब सुरक्षा गार्ड वहाँ बैठे हुए हैं तो उनके सामने ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है।
फिर आप उस टाइम पे कहाँ पे थे?
उस टाइम जैसे हम लोगों को रात को पता चला, शाम तक तो सबको धीरे धीरे मैसेज आना शुरू किया, मेरा व्हाट्सएप बंद था, जैसे मैंने खोला हुआ तुरंत रात को हम लोग पहुँचे, ये हुआ कि लड़कियों को मतलब किसी तरह थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, उसके बाद तुरंत सुबह सभी लड़कियों को लेकर हम लोग मतलब रात से ही पूरा प्लान तो हो गया कि कैंपस मतलब त्रिवेणी हॉस्टल के अंदर का सीनेरियो अलग है और सीनेरियो उसके बाहर, और बाहर के लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दे जो हमारे साथी बाहर रहते थे, क्योंकि सभी लड़कों को हॉस्टल नहीं मिलता है, तो उसके बाद बाहर वालों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिए कि देखो ऐसे ऐसे मामला हुए हैं, लड़की के साथ छेड़खानी हुआ है, अब जो है ना हम लोगों को एक मुखर प्रतिकार इसका करना चाहिए, अगर हम लोग जवाब नहीं दिए इसका तो फिर ये जो 2 दिन पहले जो स्टडी सर्किल हम पैट्रियार्की पर कर रहे थे, जो उसके सभी आयाम एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा करना, और जो अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं इसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे, हम लोगों को आना चाहिए। और फिर जब हुआ तो फिर पता चला कि जब जुड़ना शुरू हुआ तो आज ये लड़की कह रही कि मेरे साथ हुआ है, तो कल उसी बीच में एक दिन तो मेरे साथ भी हुआ था, उस दिन मेरे साथ भी हुआ था, उस दिन मेरे साथ हुआ, ऐसे जब होने लगा एक पूरा कनेक्टिविटी 10-20 लड़कियाँ मिल गई कि यार मेरे साथ भी होता, मेरे साथ भी हुआ तो मेरे साथ हुआ, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं अब इसको जो है ना आप सभी मिल के इसको चलाना चाहिए। और फिर हम लोग लंका गेट के पास गए, और क्योंकि एक चीज़ था कि प्रशासन के पास तो हम लोग जा चुके थे, प्रशासन कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं था, जब वहाँ पर लंका गेट के पास भी बैठे तो पहले दिन ही था, तो बार बार प्रशासन की तरफ से गुंडे भेजे जा रहे थे, कई वीडियोज उपलब्ध हैं जिस तरह से प्रशासन के की तरफ के कुछ लड़के थे वो जाके लड़कियों को फ्रॉड कहना, गाली देना, सब कुछ, लेकिन हम लोगों ने पूरी तरह से था, क्योंकि हम जो था पूरा मूवमेंट जॉइंट एक्शन कमेटी के जो साथी थे, हर क्योंकि बहुत ज़्यादा हुजूम आ गया था तो हर एक मतलब 10-10 फीट 5-5 फीट के बीच में हम लोग अपने लोगों को लगाए हुए थे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, क्योंकि लड़के बीच में भी घुस ज़्यादा रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि अपने लोगों को मेंटेन करना है, चाहे मिनेशी हो, शिवांगी हो, चांदनी हो, इन लोगों के बीच में, हर लड़कियों के बीच में हम लोग 10-10, 20-20 लड़कियों के बीच में रखे गए थे कि इन लड़कियों को उन बीच में रखा जाए ताकि वो कंट्रोल कर सकें, कंट्रोल में कहीं मोमेंट भटक ना जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी भी उस समय आ रहे थे, बार बार प्रशासन के रहता था कि ये लड़कियां जो है यहाँ से उठ के कहीं और चले जाएं, वो कभी कहते थे कि आप थोड़ा चले जाइए, आप बीसी के लॉज के पास, एक समय ऐसा आया था कि लोग कहने लगे नहीं बीसी महोदय के पास जाएंगे, तो हम लोगों को पूरा मानना हुआ, फिर छोटी सी हम लोग वहीं जॉइंट एक्शन कमेटी की बैठक की, अगर बोले कि अगर हम लोग यहाँ से उठ गए मुद्दा तो गौड़ हो जाएगा, क्योंकि ये सिंह द्वार ऐसा है कि सभी की नज़र है, यहीं से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी गुजरेंगे, इनको बताना है कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के आप नारा दे रहे हैं उसकी हस क्या बीएचयू में हो रही है। तो हमने कहा कि नहीं गेट नहीं छोड़ना है, बार बार प्रसाद, जैसे हम लोग आपस में दोस्त थे, जैसे 100-100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये जैसे कलेक्ट करके कभी पानी लाना, कभी कुछ लाना, कभी मतलब ये था कि पानी की बार बार ज़रूरत पड़ रही थी, हम ला रहे थे, तो उसको प्रचारित करना लगना कि नहीं, कभी कभी हम लोग सामान खरीद के ला रहे हैं, पानी खरीद के ला रहे हैं, तो सुरक्षा जो कर्मी रहते थे, जो सुरक्षा गार्ड रहते थे, वो पानी तक लाने नहीं देते थे, हम लोग घूम घूम के आते थे, जो ये सब प्रक्रियाएँ रहती थी तो आंदोलन को और मजबूत बनाती थी कि देखो जैसे वहाँ का टॉयलेट जो था गर्ल्स यूज ना करें इसलिए बंद करवा दिया गया, जब बंद करवा दिया गया तो उनके मन में एक और आक्रोश हुआ कि चलो और बताते हैं। रात को जब हम लोग 2 बजे के आसपास उसी दिन बैठे हुए थे तो मतलब 9 बजे से प्रशासन की तरफ से आने लगा कि VC साहब मिलना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है मिलना चाहें, हम लोगों को स्वागत है, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा नहीं VC साहब, क्योंकि कुछ एक ग्रुप हमारा VC साहब के लॉज के सामने भी कलेक्ट हो चुका था, वो उनके, तो ये हुआ कि VC साहब मिलना चाहते हैं लेकिन वो लोग हैं, वो लोग गेट के पास बैठे, उनको उठा दीजिए और VC साहब मिलना है। तो हम कहे ठीक है, तो हमने लोगों से कहा कि VC साहब यहाँ मिलने आना चाह रहे हैं, आप लोग उठ जाइए। तो इन्होंने उठ गए सब लोग, तो फिर हम लोग इंतज़ार करते रहे, फिर VC साहब नहीं आए। फिर उसके बाद बात हुई कि भाई VC साहब क्या है, तो बोले कि नहीं आप जो है ना अपना VC साहब अब एक अच्छा चाह रहे हैं कि MMB में मिलेंगे, वहाँ गेट के पास नहीं आएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है MMB में ही मिल लो, सभी लोग MMB में आएंगे, लेकिन कुछ लोग MMB में जाएंगे, कुछ लोग जितने लड़के होंगे हम लोग गेट के पास बैठेंगे और लड़कियां जाएंगी उनसे मिलेंगी। इंतज़ार करते रहे कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक, फिर VC साहब नहीं आए। फिर हम लोगों ने बात किया कि ये VC साहब आ क्यों नहीं, बोले नहीं आप ऐसा करो कि VC साहब अब आ नहीं पाएंगे, आप जो 5 लड़कियों को भेज दो। हम लोगों ने कहा ना अब हम लड़कियों को भेजेंगे ना कुछ करेंगे, अब हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, क्योंकि हमने VC साहब के लॉज के सामने से उठा दिया लोगों को, वहाँ जाके MMB के सामने सबको कन्विंस किया कि बैठे, इतने दिक्कतों के बाद भी लोग तैयार हो गए। लेकिन ये बार बार का जो चीज़ें हैं, लगभग उस समय 10 बजे के से बात शुरू किए थे हम लोग, ये 3 बज रहे थे रात को, और 3 बजे तक उनकी आता है कि नहीं अब VC साहब जो है 5 लोग जाना चाहें तो जा लें, और उसी बीच में आप बाहें भी फैलाते रहे कि कालिक पुत दी गई, मतलब बार बार उनका ये नहीं था कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ये लोग बाहरी लोग बैठे हुए हैं, ये लोग बाहरी फंडिंग से बैठे हुए हैं, ये लोग महामना के प्रतिमा पे कालिक पोते हैं, इस टाइप की अफवाहें फैलाते रह गए अपने लोगों को बार बार भेज के उस आंदोलन को।
अफवाह किस तरीके से फैला रहे थे, सोशल मीडिया के थ्रू?
सोशल मीडिया के माध्यम से, प्लस वक्तव्य भी दे रहे थे कि अलग जगह सोशल मीडिया में कुछ तो फैला रहे थे, अलग अलग चौराहे जैसे आंदोलन के पास भी जो कुछ सक्रिय लोग थे जो कुछ लिख रहे थे उनको बताना, दूसरी बात जो मीडिया को कुछ लोगों ने बाइट्स भी दिए।
अच्छा मीडिया अब तक आ चुकी थी? अच्छा
हाँ मीडिया तो उस समय थी, मीडिया को यह कोऑर्डिनेट किया गया कि आप जैसे लोकल मीडिया भी यहाँ की आवाज़ उस समय तक उठा नहीं रही थी। जब ANI ने पहला, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ANI ने पहला बाइट लिया, उसके बाद दूसरों को दिल्ली सर्कुलेट किया।
अच्छा ये ANI को किसने कॉन्टैक्ट किया?
क्योंकि ANI का ये था कि जो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ आ रहे थे तो ऑलरेडी सारे पूरे विश्व की मीडिया जो है यहाँ बनारस में थी, तो एक लाजमी था कि जब बनारस में प्राइम मिनिस्टर जी आ रहे हैं, BHU जैसे केंद्र में एक आंदोलन चल रहा, तो मीडिया अपने आप, और प्राइम मिनिस्टर जी का वो पूरा रूट था। अच्छा। तो मीडिया भी वहाँ थी, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मेरी बातें भी आप लोग पहुँचाइए, क्या था, तो उन लड़कियों से बाइट दिलवाई।
आप लोगों में से किसी ने कांटेक्ट किया मीडिया से भी?
जी सभी साथियों ने, जो भी मीडिया वाले थे, तो हम लोग कहते जैसे मैं एज ए ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव के नाते, क्योंकि मैं कन्वीनर था ज्वाइंट एक्शन कमेटी का, तो हम करते थे, दीपक करते थे और धनंजय जी थे वो करते थे, ऐसे सभी
संपर्क किया, मतलब
संपर्क किया और उनको जो लड़कियां थी, जो थी चाहे मिनेशी हो शिवांगी हो, सबसे बोलते थे कि इनकी बाइट लीजिए और इनके जानिए कि इन सब लड़कियों के साथ क्या होता है, जितने भी हैं उनसे क्या होता है, तो उन्होंने खुल की बात रखी अपनी। जब बात रखी तो फिर ये मीडिया जब दिखाना शुरू कर दिया, तब लोगों को लगने लगा कि हाँ कुछ पॉजिटिव दिखाना शुरू कर दिए, कुछ नेगेटिव दिखाना शुरू कर दिए। जैसे दैनिक जागरण की उसी समय की रिपोर्टिंग है तो कहता है कि पूरी बाहरी फंडिंग थी, पूरी साजिश के तहत कालिक पोती गई। हम लोग जब ये देखते थे कि यार फंडिंग तो हम ही लोग 10-50 अपने जेब पॉकेट मनी से कर रहे थे, तो उसी अगले दिन के जब अखबार में बाहरी फंडिंग का आया तो उस लड़कियों में और जोश आ गया, यार ये तो हम लोग देख रहे हैं कि ये तो अपने पैसे से हम लोग पानी खरीद रहे थे, जो खड़े थे कि 10 रुपये दीजिए, 50 रुपये दीजिए, 5 रुपये, जो जितना हो सके बंद करें। तो लोगों में जैसे ये अलग अलग तरीके से एक तरह से एक मोमेंट्स क्रिएट करने का, ये कह सकते हैं कि प्रशासन की जो गलतियां थी उसने आंदोलन को और हवा दी, अगर प्रशासन चाहता, शांतिपूर्ण तरीके से चाहता तो आंदोलन समाप्त हो जाता है, क्योंकि मांग क्या थी, मांग यही थी ना कि जो मेरे साथ मतलब छेड़खानी कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि 600 सुरक्षाकर्मी आप रखे हुए हैं, अगर इतने में भी क्लोज कैंपस में आप सुरक्षा मुझे नहीं दे पा रहे हैं तो फिर ये सुरक्षाकर्मी मत रखिए। लेकिन वही चीज़ बात हुई तो वो आंदोलन बढ़ता गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे हमारे साथी अविनाश को सभी लोगों ने, अविनाश लड़कियों की तरफ से आ रहे थे, त्रिवेणी हॉस्टल की तरफ से आ रहे थे, उनकी जानबूझ के प्रक्रिया बोर्ड के लोगों ने और जो पुलिसकर्मी थे उन लोगों ने मारा, और इस बेचारे को कुछ नहीं था, वो बोले कि जा रहे नहीं जाना है, और उसको इतने पीटे कि उसकी पीठ एकदम से लाल हो गई, और उसको हम लोगों ने सर्कुलेट किया और बताया अलग अलग अपने तरीके से जिस तरह फैलाना चाहिए, उसको हम लोगों ने किया तुरंत। फिर उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग यूनिवर्सिटियों से भी संपर्क करना उसी समय शुरू कर दिया था कि देखिए हमारे विश्वविद्यालय में आंदोलन चल रहा है, इस इशू पर चल रहा है, जेंडर के इशू पर चल रहा है और समानता के इशू पर चल रहा है, आप सभी लोग थोड़ा सा इस मुद्दे को रेज करिए। तो हर जगह से, क्योंकि ज्वाइंट एक्शन कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव मैं था और क्योंकि कन्वीनर था, तो हर जगह मैं संपर्क करना चाह रहा था, क्योंकि उससे पहले मैं महाराष्ट्र में आंदोलन कर चुका था, कुछ जगह गुजरात में कर चुका था, दिल्ली में तमिलनाडु के किसानों के बीच में गया था, तो हर जगह थोड़ा थोड़ा संपर्क था। उन संपर्क का हम लोगों ने एक फ़ायदा उठाया और सभी से बात किया कि सर मेरे यहाँ ऐसा कुछ मामला चल रहा है, आप देखिए। तो हर यूनिवर्सिटी के लोगों ने भी उस मुद्दे को लिखना शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया तो फिर सहयोग की भावना भी अलग अलग जगह से आने लगी। लेकिन जैसे लाठीचार्ज कर दिए, और मुख्य चीज़ था कि जैसे हम लोग एक उस समय जो पीएचडी करने का जो दंश होता था, उस समय हम लोगों ने भी झेला। हर किसी का गाइड ये कहता था कि बेटा वहाँ से लौट जाओ, जो फ्रंट में रहता था उसके गाइड के माध्यम से, सुपरवाइजर के माध्यम से कहा जाता था कि आप जाओ नहीं तो आपकी पीएचडी कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको बहुत परेशान किया जाएगा, आप वहाँ से तुरंत बाहर निकलो। अब ये था कि यार बाहर निकलो कि क्या करूँ। हम लोग उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो हम लोग आंदोलन में है तो आंदोलन में रहेगा, बाद में उसके बाद तो हम लोगों ने बहुत से लोग तो अपना मतलब जो सुपरवाइजर हैं उनके जो मोबाइल हैं जो नंबर थे उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया था, उनका फ़ोन ही नहीं आया, दूसरे आए तो हाँ 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 करके अगर लगे कि सर का फ़ोन है तो उनको उठाते ही नहीं थे हम लोग, इस टाइप का कर दिए थे। क्योंकि उस समय क्योंकि जिन जिन सेंटर से हम जुड़े हुए थे, वीसी के द्वारा सुपरवाइज़र को फ़ोन, सुपरवाइज़र को कहना कि भाई ये आपका इनके करके इनको करो, तुम्हारी पीएचडी कैंसिल कर दिया जाएगा, तुम्हारे साथ सही तरीके से का व्यवहार नहीं किया जाएगा, तुम्हारी पीएचडी कंप्लीट नहीं होने देगी, इस टाइप के मुद्दों की पूरी बात हुई। लेकिन हम लोग जब लगे हुए, जैसे दिल्ली जब जाना था लाठी चार्ज के बाद, जैसे हम लोग ने शहर के सभी लोगों को बुला के शहर के लोगों से बात की, उसके दिन हम लोगों को भी डांट मिली गाइड के द्वारा, सभी के द्वारा, कि आपको इस मुद्दे पर पूरी तरीके से जुड़ना नहीं चाहिए था, और प्रशासन अपने तरीके से पूरे बीएचयू को जान रहे हो कि बीएचयू बहुत क्रूर तरीके से स्टूडेंटों से निपटता है, आप लोगों के साथ भी वैसे कहीं ना कहीं करेगा, तो आप लोग कैसे झेलोगे। तो मैंने कहा सर देख लिया जाएगा। तो जब दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली जाने के लिए बहुत से लोग तैयार होते, लेकिन लास्टली कुछ ही लोग जा पाए। लड़कियों को तो घर में फ़ोन कर करके बुलाया जाता था कि तो आपकी लड़की आंदोलन में जुड़ी हुई है, उसको संभालिए, और वहाँ से उसके माता पिता को बुला बुला के भेजा जा रहा था। या कि जो लड़कियां आंदोलन में, कुछ ही हर लड़कियों को कि भाई आपकी लड़की आंदोलन में बैठी हुई है, इसका नाम ये है, ये इसका इसको बुलाइए, यहाँ पढ़ने आई कि आंदोलन करने आई है, मतलब सीधे उसके राइट्स, उसकी समस्या पर कोई चर्चा नहीं। आंदोलन को ख़त्म करने के लिए माता पिता को इन्वॉल्व करना, आपकी लड़की नेतागिरी कर रही है, आपकी लड़की ये कर रही है, आपकी लड़की पढ़ने नहीं आई है, वो सब चीज़ें कर करके कर रहे थे। लेकिन जब दिल्ली गए, दिल्ली में आप सभी का सहयोग था, मनीष भाई का पूरा बहुत सहयोग था, क्योंकि मनीष जी एक तरह से कहा जाए कि हम लोग जितनी समझती हम उतना आंदोलन करते थे, लेकिन मनीष भाई ने हम लोग, क्योंकि उनकी एक व्यापक समझ है, उस समझ के आधार पर हमारे आंदोलन को और एक मजबूती प्रदान की। और जैसा हम चाहते थे कि ये जो लड़ाई लड़ी गई है समानता की लड़ाई है, ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं है, ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, ना किसी को प्रमोट करने की है, ये लड़ाई जब समानता की है और सोशल जस्टिस की है, तो उस इशू को थोड़ा सा और अच्छे से रेज किया जाए, ताकि जिन अधिकारों के की मांग कर रहे हैं और जो अधिकार अभी तक हमको मिले नहीं हैं, वो अधिकार मिलने चाहिए। हम बार बार ये महसूस करते हैं कि हमारी एक साथी हमारे साथ रह रही है, लेकिन वो 6 बजे, कुछ हॉस्टल 6 बजे बंद हो जाते थे, कुछ हॉस्टल 8 बजे बंद हो जाते थे, और उसमें रहता था कि यार मुझे जाना है, बार बार होता था कि हम तो रात भर घूमते रहते हैं, लेकिन हमारी वही महिला साथी है जो उसको घूमने की कोई आज़ादी नहीं है। तो ये कैसा क्लोज कैंपस है जो चारों तरफ से हम कहते हैं कि बाउंड्री भी है, इतने सुरक्षा भी है, फिर भी हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने कहा कि ये नेचर चेंज करना पड़ेगा, उसकी लड़ाई थी। तो फिर हम लोगों ने जब संपत दिल्ली गए तो उससे भी इम्पैक्ट गया और प्रशासन को एक मजबूर होना पड़ा कि बीएचयू के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई महिला चीफ प्रॉक्टर बनती हैं और उसके बाद जो टाइमिंग है उसको चेंज कर देते हैं और लड़कों का जो टाइमिंग रहता है वो लड़कियों का भी टाइमिंग कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ बहुत खलती थी, उस समय भी खलती थी और आज भी खल रही है, कि प्रोफेसर्स का जो नेचर है हमारे, जो मतलब ड्यूअर करेक्टर है, वो आज भी बरकरार है, जो बहुत अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं। लेकिन जब उस समय खड़े होने की बात आई तो एक दो लोगों को, चंद लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी कोई लोग नहीं खड़े हुए, चाहे बीएचयू के अंदर फेमिनिस्ट डिस्कोर्स के जो प्रोफेसर्स हों या सोशल जस्टिस के डिस्कोर्स के जो प्रोफेसर्स हों, वो सब बीसी के साथ थे।
तो कोई भी प्रोफेसर्स
एक दो को छोड़ दिया जाए, चाहे मंडल सर को छोड़ दिया जाए या अहिरवार सर को छोड़ दिया जाए, चाहे चौथी राम यादव सर, ये कुछ लोग हमारे सपोर्ट्स में आए। चंद्रकला त्रिपाठी मैम भी पोस्ट अपना लिखी फेसबुक में। लेकिन यही हुआ कि जो हमारे पॉलिटिकल साइंस, जो सोशल साइंस का पूरा डिस्कोर्स चलता है, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो सोशल जस्टिस से लेकर इक्वलिटी, लिबर्टी, या सोशियोलॉजी के जो प्रोफेसर थे, पूरा सोशल साइंस, कोई प्रोफेसर निकल के नहीं आया जो सीधे कह सके कि वीसी साहब बच्चों की मांग ये है। और जिसको हम क्लास में पढ़ाते हैं वो किस लिए पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं कि समानता मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और एक डिग्निटीपूर्ण जो जीवन है वो सब जीना चाहिए, वो पढ़ाते हैं। वो चीज़ों को जो पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं ये लगा कि यार वो प्रोफेसर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि उनको देना चाहिए कि जो इशू है वो कोई, हम कुछ पॉलिटिकल इशू की मांग नहीं कर रहे थे,
जायज़ इशू था।
तो ये चीज़ों पर थोड़ा सा लगा, लेकिन हम लोगों को भी डर था, हम लोगों को ये डर था कि अगर कुलपति महोदय जो पूरे कृत्य ऐसे कर रहे हैं, अभी जैसे ये लगता था कुलपति महोदय के बारे में तो हम लोगों को पता था कि कोई एक्शन ज़्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि जब वो एक तरह से पूरी मांग शुरू की गई थी कि जो रेपिस्ट रेप का आरोप लगे हुए सीएम है, हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनको ओपी उपाध्याय जी, उनको अभी तक हटाए नहीं थे और बार बार, तो मुझे लगता था कि अब यार ये वीसी तो अभी तक कुछ ऐसा कुछ एक्शन ले नहीं रहे इनके खिलाफ। हर मीडिया हाउसेस उनके बारे में बोल चुका था, सोशल मीडिया में भी लोग लिख रहे थे, लेकिन वीसी साहब उसी वक्त उसको उसका टाइम जो था एक्सटेंड कर रहे थे। उसी समय बहुत से प्रोफेसर्स जो थे, जो अलग अलग पद को सुशोभित कर रहे थे, कई सेंटर के डीन थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वीसी के सपोर्ट में मार्च निकाल रहे थे। तुम लगता था कि यार कम से कम
कुछ हो नहीं पाएगा,
हाँ इसका कुछ हो नहीं पाएगा। दूसरी बात वो कहते थे कि यार एक तरह से जो एबीवीपी जैसे एक संगठन था, उसने भी पूरी तरह से एक सपोर्ट में वीसी के मुहिम छेड़ रखी थी। दूसरी बात कास्ट का एंगल भी रहता था कि जो मालवी भवन है हमारा, वहाँ पर कुछ एक विशेष जिस कास्ट के हमारे वीसी साहब थे, उस कास्ट के कुछ स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की भी बैठक हुई थी कि मामला मेरे जाति का है और वीसी साहब कुछ भी करें इनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये पूर्वांचल की राजनीति के एक चीज़ें भी है कि जो बीएचयू है, बीएचयू कास्ट पॉलिटिक्स का एक गढ़ भी है कि हम कभी कभी ये हो जाते हैं कि बहुत प्रोग्रेसिव हैं लेकिन एक जाति के भी हैं, उस जाति के भी के लोग अगर गलत कर रहे हैं हम उसको भी प्रोटेक्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं वीसी साहब के साथ भी यही हुआ कि लोग मुखर नहीं हुए, उनका जो प्रोग्रेसिव जो प्रगतिशीलता थी वो कहीं ना कहीं जाति आबद्ध या पद की आबद्ध या भय पर उस पर आबद्ध हो गए, इसका भी थोड़ा सा कष्ट था हम लोगों को। लेकिन यही हुआ कि जो आंदोलन जब बढ़ा, उस लड़कियों के जज्बे को सलाम, और साथ में जो हमारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी का पूरा टीम था वो बहुत सक्रिय था और सजग था, आज भी पूरी तरह से लगा हुआ है। उसने पग पग में, मतलब जहाँ भी जैसे ज़रूरत हुई, चाहे शहर के लोगों को कोऑर्डिनेट करना हो, चाहे सभी लोगों से जो गणमान्य नागरिक हैं उनसे संपर्क करना हो, प्रोफेसर से मिलना हो कि सर आप हमारे मतलब इस मुहिम को, जो समानता की मुहिम है उसको एक मजबूती प्रदान करिए, उस पर पूरा हम लोगों ने लड़ा। और ये कहीं ना कहीं ये हुआ कि बीएचयू के इतिहास में एक पहला ऐसा हुआ कि एक जो संघ की पूरी एक विचारधारा है, उस विचारधारा में उसको चैलेंज करते हुए फ्रंट में, जैसे हमारे साथी दीपक कहते हैं कि हम लोगों ने फ्रंट पे रह के लड़ाई लड़ी और फ्रंट पे लड़ाई लड़ के इस संघी जो एक पूरी मानसिकता थी उसको बैकफुट में लाने की कोशिश किया। और पूरे जैसे उसी बीच में मुझे क्योंकि हम लोगों ने संबद्धिया आयोजित किया था इसी पूरे इशू को लेकर, और तो फिर उसके बाद जब महाराष्ट्र में गया तो लोग कहे कि जज्बे को सलाम यार आपके जेसी और आपके साथियों का, कि आप लोगों ने इतने बड़े आंदोलन को बहुत सलीके से, और आप लोगों को डंडा पीटते रह गए, अविनाश पीटते रह गए, गौरव का पैर टूटा, हाथ टूटा, बोले कि आप डंडा मिलते रह गए लेकिन आप भी वही गांधीयन वे को फॉलो करते रह गए और आप उनके ऊपर कोई उपद्रवी ऐसे कोई मतलब चीज़ नहीं अपनाए कि आप पत्थर फेंक दो और कोई आगजनी कर दो, आपने नहीं किया। बाकी चीज़ें ठीक है, प्रशासन अपनी मांगों को जायज कराने के लिए प्रशासन कहीं ना कहीं हिंसा, क्योंकि आजकल हम हर चीज़ों को देखते हैं कि जब प्रशासन अहिंसक आंदोलन, क्योंकि मांग जायज रहती है, मांगों को अगर मान नहीं सकते हो और मांग को मानना नहीं चाहते तो उस आंदोलन को अहिंसक आंदोलन को हिंसक बनाने की भरपूर कोशिश की जाती है। सेम वही चीज़ इस आंदोलन को भी करने की कोशिश की है वो लोग, क्योंकि जिस दिन अहिंसक आंदोलन को तो कुचल सकते नहीं हैं तो उसको हिंसा का नाम देकर ये कुचल देते हैं और वो मांग दूसरी तरफ हो जाती है। सेम इसी आंदोलन को भी उन्होंने किया कि उस अहिंसक आंदोलन को जब ये समझे कि अब जो है हम हार पाने वाले हैं तो उसको हिंसक इन्होंने बनाने की कोशिश की और हिंसक बनाकर इसको कुचलने की कोशिश की और एक तरह से कह सोच रहे थे कि मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन ये पूरे देश के सामने पूरा मैसेज पहुंच चुका था, ये छात्राओं के द्वारा हिंसा नहीं फैलाया गया है, छात्रों के द्वारा हिंसा नहीं फैलाया गया है, ये प्रशासन के द्वारा सुनियोजित तरीके से हिंसा फैलाया गया है, तो इस हिंसा में जो है प्रशासन का हाथ है और जब प्रशासन का हाथ है तो ये गलती पूरी तरह से BHU प्रशासन की है, इसलिए BHU प्रशासन मतलब BC के खिलाफ एक्शन लिया गया और उनको छुट्टी पे भेजा गया।
आपके हिसाब से क्या बेहतर और हो सकता था इस आंदोलन?
देखिए इस आंदोलन को जब मैं दिल्ली में था, इस पूरे आंदोलन को लेकर हम लोग दिल्ली में थे, उस समय भी हम लोगों की मांग थी कि ये आंदोलन देश को एक दिशा देना चाहिए था, पूरे जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा है उसको एक दिशा देनी चाहिए थी, जन जन के बीच में जागरूकता फैलाना चाहिए, जो वो नहीं हो पाया, हमारे 10-20 ऐसे लीडर्स तैयार होना चाहिए था जो पूरी मुखरता के साथ कहें कि ये लड़ाई किस मुद्दे की थी, ये लड़ाई समानता की थी, ये लड़ाई सामाजिक न्याय की थी, ये लड़ाई किसी जाति की नहीं थी, एक विचार की थी जो विचार शोषण पर आधारित विचार को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा था, एक विचार उस विचार के प्रति लड़ाई थी जो ये नहीं मानता था कि ये समानता का अधिकार लड़कियों को भी है, ये नहीं मानता ये उस विचार के खिलाफ लड़ाई थी कि लड़कियां जो हैं सिर्फ कमरे में बंद रहें, लड़कियों को घूमने की आज़ादी नहीं है, लड़कियों को फ्रेंड्स बनाने की आज़ादी नहीं है, उसके खिलाफ ये पूरी मुहिम थी। और मुझे लगा कि ये आंदोलन को थोड़ा सा और तरीके से, जिस तरह से पूरा राष्ट्रव्यापी हुआ था, इस राष्ट्रव्यापी इसको बनाया जा सकता था। कभी कभी ये भी लगता है कि यार स्टूडेंट्स का जो हर तरह कैंपसों में बंटना, हर ग्रुप में बंटना, और जो पॉलिटिकल लोग हैं इसमें ये भी समझ में आता है कि जो जन आंदोलन की जो राजनीति है, जो जब से जन आंदोलन की राजनीति ये राजनीतिक दल छोड़ दिए हैं तो जन आंदोलन को महत्व ही नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जन आंदोलन को राष्ट्रव्यापी होना चाहिए था और एक ऐसे लीडर हमारे तैयार होना चाहिए था जो रिप्रेजेंट होना चाहिए था और हर जगह जा जाके इनको एक पूरे तरह से एक पूरी मुहिम को, क्योंकि BHU का आंदोलन एक तरह से देश को एक दिशा दे रहा है, एक मॉडल दे रहा था, मॉडल ये दे रहा था कि हम अहिंसक तरीके से पूरी लड़ाई लड़े, पूरे राजनीतिक दलों को भी अनुसरण करना चाहिए था, सिविल सोसाइटी जो मूवमेंट्स कर रहे हैं सरकार के खिलाफ शोषण के खिलाफ, उनको भी इस मूवमेंट का अनुकरण करना चाहिए कि कैसे इस मूवमेंट को सही तरीके से लड़के सरकार को बैकफुट में लाए और सभी मांगे, अधिकांशतः मांगे मनवा लिया गया, तो वो मुझे थोड़ी कमी लगी। दूसरी बात ये थी कि जो जिस तरह से ये लड़ाई को एक सामाजिक न्याय के भी दायरे में लाई जा सकती थी, लेकिन हम इस लड़ाई को सामाजिक न्याय के दायरे में भी ला नहीं पाए, और क्योंकि पूरा आंदोलन राष्ट्रव्यापी था, पूरे राष्ट्र के स्तर पर इस आंदोलन की आवाज़ को ले जाना चाहिए था, जगह जगह कार्यक्रम होने चाहिए थी कि ये देखो महिलाओं के कुचलने का जो अभियान BHU में शुरू किया गया था उस अभियान को मुंहतोड़ जवाब BHU की लड़कियों ने दिया है, अब मुझे हर कैंपस में इस टाइप के अभियान की ज़रूरत है और हर शहर में अभियान की ज़रूरत है। अगर वो अभियान को सही तरीके से लिया गया होता तो चाहे वो इस टाइप की, चाहे जम्मू कश्मीर की घटना है, चाहे अभी उन्नाव की घटना है, इधर जहानाबाद की घटना है, मध्य प्रदेश में रेप हो रहे हैं, हर स्टेट में जो रेप हो रहे हैं वो, और उन रेप की संस्कृति से अभी तक हम बच नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर BHU के आंदोलन को हम व्यापक तरीके से, व्यापक परिप्रेक्ष्य से हर ज़िले हर प्रदेश में ले गए होते तो कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा मुझे निजात मिलता, क्योंकि ये बताया जाता है कि ये लड़ाई शोषण अत्याचार और छेड़खानी के विरुद्ध थी, कहीं ना कहीं नेचर, अगला नेचर छेड़खानी का अगला नेचर उसी टाइप का हो जाता है, तो अगर इस आंदोलन को हम सही तरीके से दिशा दिए होते हम सभी मिलके और सभी का कोऑपरेशन होता तो जो समाज की विकृति है, जो समाज में आज भी हम देख रहे हैं कि लड़कियों को द्वयम दर्जे की जो स्थिति पर लाया जा रहा था उससे थोड़ी सी मुक्ति मिल जाती है, ये मेरा मानना है। ये थोड़ा सा हम लोगों को कमी हुई, ये हम जो नेतृत्व करने वाले साथी थे उनकी भी कमी मानते हैं और दूसरी बात शहर के जो साथी थे, जो अलग अलग जगह पर जो आंदोलनकारी साथी थे, उनका सहयोग ना मिल पाना भी एक थोड़ा तरह से दुर्भाग्यपूर्ण था। और इस आंदोलन के नज़रिए को अगर सही तरीके से हम अच्छी तरीके से देखे होते तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा समाज है वो जो आज पूरी इस विचारधारा के दौर पर जो संघी विचारधारा का दौर चल रहा है, जो एक तरह से एक हेजमोनी करके और ये कह रहा है कि हम समानता की संस्कृति नहीं विषमता की संस्कृति लाना चाह रहे हों, तो इस समानता की संस्कृति का जो द्योतक वाला आंदोलन था, महिला आंदोलन था, वो बहुत सक्सेसफुल जाता और एक तरह से जो महिला आंदोलन का जो पूरा इतिहास है उसमें एक नए तरीके का एक बड़ी लाइन होती है अगर हम सही तरीके से पूरे आंदोलन को देख पा रहे हैं तो।
पर्सनली क्या चेंज किया आपके लिए, आपके लिए स्पेशली?
पर्सनली ये हुआ कि हमारे लिए मुझे और सजग किया, सजग ये किया कि अब कहीं भी कुछ होता है तो हम लोग पहुंच जाते। जैसे एक दिन ये हुआ कि पहले बहुत सी चीज़ों को हम अवॉइड कर देते थे, लेकिन अभी एक दिन अब हम सजगता के साथ ही एक लाइब्रेरी अपना वहाँ गुजर रहे थे, देखे कि लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरी के पास साइकिल स्टैंड है वहाँ पर एक आदमी शराब पिया बैठा हुआ साइकिल स्टैंड वाला।
अच्छा।
और जब हम कुछ देर बैठे तो पता चला कि थोड़ा ऑब्जर्व किए तो एक लड़की को उसने कभी छेड़ा था और उसको परेशान कर रहा था, तो तुरंत जब हमने देखा वहाँ पर कि लड़की को परेशान कर रहा, तुरंत जाके हम लोगों ने उसको लगभग दो चार थाप उसको दिए और बोले कि यार इस लड़की को, तो पता चला वो नेपाल की लड़की थी, यहाँ पर BSC AG की लड़की थी और वो बहुत दिनों से उसको टॉर्चर कर रहा था लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी, तो हम लोगों ने तुरंत उसको कहा, फिर मतलब दर्ज कराया। तो ये था कि अब हम लोग एक सजग तरीके से हो गए हैं कि एक उत्साह हो जाता है कि यार हम इस चीज़ से लड़ सकते हैं, पहले उतना उत्साह नहीं था, पहले लगता था कि अगर जैसे लड़ना शुरू करेंगे ना तो प्रशासन हमको कुचल देगा, प्रशासन कहीं ना कहीं कोई बहाना बना के हमको मतलब एक तरह से परेशान करेगा, लेकिन अभी लगता है कि यार जैसे अगर मैं लड़ना शुरू कर जाऊँ तो ये इस चीज़ को विरोध करना चाहिए और विरोध करेंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। तो ये हुआ कि कहीं भी अब कुछ भी अन्याय होता है कैंपस में तो हम लोग मुखरता से हो जाते हैं। दूसरी बात हो जाता है कि उस लड़ाई के बाद ही लोग कहते हैं कि अच्छा ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हैं, तो अपने आप एक सजग हो जाते हैं कि यार ये लोग हैं तो मतलब ये लोग पॉजिटिव चीज़ें ही उठाएंगे,
एक लेजिटिमेसी बन गई है आप लोग।
हाँ, चाहे हम प्रोक्यूरर बोर्ड ऑफिस में जाएं कि ये लोग आए हैं तो मतलब कोई ना कोई सही बात उठाएंगे। अब प्रशासन, ये हुआ कि प्रशासन से अपनी बात लेकर जाएं तो कहीं ना कहीं उस बात को सुनता है, ये चीज़ें हम लोगों के साथ थोड़ी सी बेनिफिट हुई। दूसरी बात, शहर के लोगों के बीच में भी जाता हूँ तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत बेनिफिट हुआ कि लोग कहते हैं कि यार इन लोगों ने एक बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन किया था और सरकार को बैकफुट में लाया था, भले इनको कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी, तो ये एक बेनिफिट हम लोगों को मिला। अब ये होता है कि अब हम अपने घर और आसपास के लोगों को भी देखते हैं कि यार वो कभी अगर घर जाता हूँ तो घर में कुछ गलत होता है तो ये लगता हूँ कि यार आंदोलन हम लोगों ने किस लिए किया था, आंदोलन तो हम उसी आज़ादी के लिए किए थे ना, लेकिन अपने घर में तो कुछ गलत देख रहे हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं मुखरता से हम लोगों को अब बोलना पड़ जाता है, पहले नहीं बोल पाते थे लेकिन अब ये लगता है कि यार हम फिर किस लिए आंदोलन कर रहे थे, तो अब हम लोग उस चीज़ को भी थोड़ा घर में भी जाके जो है ना, या घर के आसपास रिलेटिव्स में अभी भी गाँव जाए तो वही मतलब मिलता है शोषण, मतलब महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ अभी भी दुआएं स्थिति रहती, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं। और इस आंदोलन का ही प्रभाव था कि क्योंकि लीडिंग फेस में थे कि अभी भी एक भय बना रहता है कि अगर हम भेटी से गुजर रहे हैं, अगर कुछ लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा तो अगर वहाँ ना बोलें तो लगता है यार कि फिर कल लोग यही कहेंगे कि यार आप लोग उस आंदोलन को तो लीड कर रहे थे, क्या यहाँ पर शोषण आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पर अत्याचार नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोगों के पास एक रहता है कि पूरा मतलब किसी रास्ते से गुजरते हैं तो एक चेतना के साथ रहते हैं कि यार कहीं कुछ गलत हो रहा है लड़कियों के साथ, तुमको बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोले तो लोग कह देंगे कि यार उसी बस आंदोलन के लिए तुम लोग नेता बने हुए थे, तो ये हम लोगों के लिए एक तरह से
जिम्मेदारी
हो गई है।
इसके आगे क्या क्या करियर का क्या सोचा है, जिंदगी का क्या सोचा है, प्लान क्या है फ्यूचर?
फ्यूचर्स का प्लान ये है कि देखिए हम लोगों का पूरा लक्ष्य है कि सामाजिक न्याय का जो पूरा मोमेंट्स है, सभी को समता मिले, सभी एक साथ किसी प्रकार का न्याय ना हो, उस मुहिम को थोड़ी तेज कर रही है। और PhD तो चल ही रही है, अपनी रफ्तार से चलेगी, और लेकिन यह है कि अभी जो जब अभी थोड़ा उत्साह है, इस उत्साह को थोड़ा जो BHU के भी हम लोग कहते हैं कि जैसे एक भारतीयता की एक परंपरा थी BHU में, किसी भी वैचारिक धारा का अभिव्यक्ति हो लेकिन एक समन्वय रहता था और ये रहता था कि लोग बात संवाद प्रतिवाद करते थे और उसी के आधार पर ठीक है विचारधारा की बात चल रही तो हम यहाँ पर लड़ेंगे, लेकिन चाय हम एक साथ पीते थे, तो रहता था कि यार वैचारिक स्तर पर तुम लड़ाई लड़ेंगे लेकिन मन भेद नहीं मतभेद करेंगे और उस मत को, अपने मत को स्थापित करेंगे, जिस टाइप का हम समाज स्थापित करना चाहते हैं उस समाज को इस्टेब्लिश करेंगे, इसकी मुहिम एक छेड़ेंगे, राष्ट्रव्यापी हम लोग सोच रहे हैं। दूसरी बात, अभी किसानों से भी हम चीज़ें जोड़ रहे हैं कि आज एक महिला, जैसे किसान में पुरुष को किसान माना जाता है लेकिन महिला को किसान नहीं माना जाता है, तो हमारी एक लड़ाई, इसके भी हम पूरे जॉइंट एक्शन कमेटी और सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि यार एक पहली मतलब लेजिटिमेसी हम लोग ये भी थोड़ा काम करें कि महिलाओं को भी किसान माना जाए, क्योंकि पूरा काम किसानों में हम देखते हैं कि महिलाएं सबसे ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन उसको अभी तक किसान माना ही नहीं जाता। और कहीं ना कहीं हम जो फेमिनिस्ट पूरा डिस्कोर्स देख रहे हैं, उस पूरा डिस्कोर्स से वो किसान महिलाएँ गायब हैं। तो मैं कई लोगों से मिला कि हमारे यहाँ जेंडर पर एक सेमिनार हुआ था, उसमें भी हमने बोला कि ये पूरा डिस्कोर्स जो थोड़ा शहरी मध्यवर्गीय महिलाओं का है, हम जिस 70% आबादी की बात करते हो गांव में रहती है, उसके मुद्दे को हम एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। तो वो तो सबसे ज़्यादा जाति पर है, वर्ग पर है, सब चीज़ों से शोषित महिला है, तो उसकी चीज़ें भी हमको थोड़ा सा एड्रेस करना चाहिए। तो हमको लगता है कि वो पूरा मुहिम हम छेड़ेंगे और जो किसानों की पूरी दयनीय स्थिति है उसके खिलाफ़ एक मुहिम ले जाके एक सामाजिक न्याय की जो परिकल्पना है उसके साथ पूरे इस मुहिम को लड़े। और दूसरी कनेक्टिविटी हम पूरे हमारे साथियों की है कि जो गांव और शहर का जो डिवीज़न है उसको कनेक्ट करेंगे। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो BHU के स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथी हैं, वो हम गाँव जाते हैं, हर गाँव में जाएंगे, संडे सैटरडे ऐसे जाते हैं घूमने, वहाँ पर लोगों से इंटरेक्ट करके लोगों को जोड़ रहे हैं। पहले एक ख्वाब रहता था कि BHU के लड़के यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं जुड़ते थे, अब हम लोग धीरे धीरे गांव से जुड़ रहे हैं। और ये कहते हैं कि मेरा खुद का दायित्व है कि हम इन लोगों से जुड़े और इनके टैक्स से हम पढ़ रहे हैं, इनके लिए करना होगा, अगर हम इनके लिए नहीं करते हैं तो देशद्रोही हैं, चाहे जो भी है। प्रोफेसर से भी हम कहते हैं कि आपके पास वक्त रहता है, आप भी करिए, अगर आप भी नहीं जा रहे हैं तो आपके भी पढ़ाने का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तय करिए। और आपको तय करना पड़ेगा कि इस यूनिवर्सिटी है, इसके आसपास अगर 16,000 लोग के आसपास, मतलब 30,000 के आसपास स्टूडेंट हैं, उस 30,000 स्टूडेंट हैं कम से कम 1,000 के आसपास गांव होंगे, तो कम से कम हमको लोगों को 2-4 लोगों को मिलके एक गाँव ले लेना चाहिए। अगर उस, और अब जिस विचारधारा के हैं, जैसे हम पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर उस गांव को हम तब्दील नहीं कर पाते, अगर हम 20 गाँव 50 गाँव ऐसे भी तब्दील कर लिए, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी और एक मॉडल होगा। ये चीज़ें की पूरी मुहिम हम लोग छेड़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इस लड़ाई को थोड़ा राष्ट्रव्यापी बनाया जाएगा। और ये जो पूरे जो BHU का अनुभव है, जो बाकी गांव में जाकर जो हमको अनुभव मिल रहे हैं, वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, उसको ले जाके हम पूरे राष्ट्रव्यापी ये चीज़ें करेंगे। हर कैंपसों में जाके बोलेंगे अभी कि ये BHU का पूरा मूवमेंट्स था, हम BHU के छात्र जाके लोकल ऐसे कनेक्टिविटी कर रहे हैं, इन इन गाँव में हमारे कुछ प्रोजेक्ट सफल हो रहे हैं एजुकेशन के, लाइब्रेरी के, जो हम लोग जैसे हमारी कुछ पुरानी किताबें होती हैं हम उसको कलेक्ट करके किसी गांव में एक लाइब्रेरी की इस्टेब्लिशमेंट करना, ऐसे कई प्लान हमारे पूरे चल रहे हैं। हमको लगता है कि हर यूनिवर्सिटी के लोगों को हम ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारे संपर्क हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करके गाँव का जो वेलफेयर का काम है, क्योंकि अभी हम गाँव में जाते हैं तो लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, महिलाओं को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है। किसान अगर APMC में जाता है, मंडी में जाता है, तो उसके अपने राइट्स के बारे में उसको पता नहीं है। पता चलता है कि 20 दिन 50 दिन अपनी धान बेचने के लिए, गेहूं बेचने के लिए खड़ा रहता है। तो हमको लगता है कि ये हम छात्र अगर एक दिन जाके उसको कुछ बता दें तो बहुत चीज़ें उसको सॉल्व हो जाती है। प्रशासन के लोग भी जो है ना एक तरह से एक सहयोग करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो उस बेचारे किसान को जिसको कुछ पता नहीं है उसको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी हमने एक काम किया था थाने में जाके, थाने में पता चला कि लोगों की रिपोर्ट्स नहीं लिखी जा रही थी, तो थानेदार से मिल के हम लोगों ने रिपोर्ट्स लोगों को पहुंचाना शुरू किया कि भाई इनकी कम से कम गरीब महिलाएं हैं, इनकी रिपोर्ट्स लिखी। अभी ये सुसवाही गांव का मामला है, उसको ले जाके, और जैसे कुछ लोगों ने अभी लव मैरिज शादी किया तो उनके घर वाले उनको परेशान करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई परेशान मत करो, अगर इनकी स्वेच्छा से शादी करना चाहते हैं तो आप करने दीजिए। उन लोगों में भी कुछ लोगों को अभी उनके पास कुछ रोज़गार नहीं था, तो हम लोगों ने जो ट्यूशन कुछ जगह खोज के उनको ट्यूशन दिलवाया कि भाई ट्यूशन आप पढ़ाइए। फिर उनको जब थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिए तो उनमें 2-4 जो गरीब लड़के थे उनको एडजस्ट करवा के उनको बोले कि भाई आप इनको कुछ, उन्हीं में से 10 लड़के पढ़ा रहे हैं, 2 लड़के आप फ्री में पढ़ा दें। तो ऐसी भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके, और इस प्रक्रिया के माध्यम से जो हमारे साथी आ रहे हैं और बहुत ही सजग तरीके से आ रहे हैं, और उनको बार बार हम लोग यही वैल्यू दे रहे हैं कि भाई आप किसी की मदद से आ रहे हैं, तो आप जो पढ़ रहे हैं आपके अपने गांव से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने आसपास के लोगों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आपको निभाना है, और उसको निभाना है। इसलिए आपको, आपकी मदद हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भी दूसरों की मदद करें। इस पूरे मुहिम के साथ हम लोग आगे का मूवमेंट देख रहे हैं कि ऐसे लेकर चलेंगे इस पूरे मुहिम को।
ठीक है, थैंक यू सो मच।
थैंक यू।